हरे कृष्णा। दिस क्लास ऑन श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 39 गिवन एट एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 7th मार्च 2017 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास। आते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु बुद्धाय आयुक्तायाय पार्थ कर्म बंधनं प्रहस्यसि एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वमाश्रणु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधनं प्रहास्यसि एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्धाय युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनं प्रहास्यसि। इसका अनुवाद हम सब साथ में मिलकर बोलेंगे। यहां मैंने विश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वाह, कर्म बंधन से मुक्त होना होती एक कहते हैं एक ऐसा विशेष विषय है ये, जो कि सभी लोगों को इस संसार में पुनः पुनः बांध रहा है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस श्लोक के तात्पर्यों के द्वारा, इसके एक एक शब्दार्थ के द्वारा इसको समझें। तो इस श्लोक को हम अगर तीन भाग में बांटें तो उन तीन भाग के द्वारा हम इस श्लोक को अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है सबको? पीछे संगीता माता जी। तो इसमें सबसे पहला शब्द दिया गया है, हाँ, विश्लेषिक अध्ययन द्वारा। तो वैश्लेषिक अध्ययन जिस चीज का होता है, भगवान कह रहे हैं उसको बोलते हैं सांख्य। क्या बोलते हैं? तो अगर आप इस्कॉन की भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता के अलावा किसी और भगवत गीता को देखें, गीता गोरखपुर की भगवत गीता या फिर कोई भगवत गीता, तो उन्होंने दूसरे अध्याय का नाम दिया है सांख्य योग। और सांख्य योग को गलत रूप से विश्व के सामने प्रतिस्थापित किया गया है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था कपिल मुनि। वो भगवान नहीं थे, एक मुनि थे। तो कपिल मुनि प्रकट होकर के भगवत गीता के जो सांख्य योग दर्शन है उसके बारे में स्थापित करते करते ये बोलने लगे कि आत्मा का कोई आकार नहीं है और परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। तो निराकारवाद का उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। तो इस तरह से जो सांख्य योग को उन्होंने समझा लोगों ने, कई लोग मिलेंगे आपको जब आप भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि हम तो सांख्य योग को फॉलो करते हैं, भक्ति योग फॉलो नहीं करते। सांख्य, सांख्य मतलब बड़ा ही सरल शब्द है, संख्या। जब किसी भी चीज को समझना हो तो हम उसको संख्याओं में समझते हैं, डिजिट्स। किसी की उम्र कितनी है तो डिजिट्स, किसी की हाइट कितनी है तो डिजिट्स, किसी का वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 2 digits, है ना, कोई कितने साल से इस घर में रह रहा है, 2 digits. तो हर जगह संख्याओं का प्रयोग किया जाता है. इसलिए संख्या पूर्वक आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर के अध्ययन को सांख्य योग उन्होंने कहा, ऐसा कपिल मुनि ने कहा. परंतु कपिल मुनि के आने से पहले ही श्रीमद् भागवत में कपिल देव भगवान प्रस्तुत हो चुके हैं संसार के सामने, विश्व के सामने. तो श्रीमद् भागवत के 3rd अध्याय में कपिल भगवान देवहूति माता के गर्भ से प्रकट होकर माता को खुद ही पुत्र संदेश दे रहा है. सबसे कमाल की बात है, इस संसार में आपने देखा है माँ बच्चे को शिक्षा देती है, यहाँ पर कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति माता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किससे, बेटे से. तो ये भी गलत फहमी है कि कोई कम उम्र का व्यक्ति या हमारा खुद का अपना हमको ज्ञान नहीं दे सकता. तो देवहूति माता के पुत्र कपिल भगवान ने उनके सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे श्रीमद् भागवतम का 3rd स्कंद कहते हैं, 3rd canto ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो उन्होंने सांख्य योग का सही दर्शन दिखाया. सांख्य योग का उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में बताया है, वैसे ही देवहूति माता के पुत्र भगवान कपिल ने भी बताया, क्योंकि भगवान तो एक ही है. लेकिन जो ये कपिल मुनि आए, इन्होंने इसको थोड़ा सा भ्रमित कर दिया लोगों को. भगवान साकार है, निराकार नहीं है, और आत्मा का भी आकार है. तो लोग पूछते आत्मा का क्या आकार है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, कई संस्थाएं बता रही है ज्योति के रूप में है आत्मा. तो आत्मा का क्या आकार है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ अ सोल. तो आत्मा के आकार के अध्ययन को ही सांख्य योग कहते हैं. तो हमने जो पढ़ा है अब तक 11वें श्लोक से लेकर भगवद गीता के 30वें श्लोक तक, 30 श्लोक तक, 11 to 30 सांख्य योग की ही चर्चा हुई है. जितने भी श्लोक हमने अब तक गीता के एक एक श्लोक पर चर्चा की, हरे कृष्णा, तो एक एक श्लोक पर जो हमने चर्चा की है गीता के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का ही दर्शन हुआ है. तो क्या है सांख्य योग, तो संख्या पूर्वक हमने समझा कि आत्मा का साइज क्या है. पढ़ा था हमने, क्या साइज है बताइए. तो माता है स्मार्ट है, यहाँ पे प्रभु जी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम आत्मा का साइज प्रभु जी को, बाल का 10वां हिस्सा नहीं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है आत्मा का साइज. ये हो गया सांख्य योग, संख्या पूर्वक. सेकंड संख्या, आत्मा का फॉर्म है कि नहीं है, रूप है कि नहीं, कैसा रूप है, कैसा रूप है आत्मा का, कैसे हैं आप, ओके आप तो आत्मा है, कैसे हैं आप, सच्चिदानंद तो आपका एलिमेंट है, तत्व आपका सच्चिदानंद है, आपका रूप का फॉर्म क्या है, कैसे दिखते हैं आप. हाँ जी भाई, रूप क्या है. कोई बोलता है आत्मा हमने टीवी सीरियल में देखा है, एक लिंग शरीर लेके जा रही है ऐसे हिलती डुलती दीपक की ज्योति के जैसी, पर आत्मा तो 10,000वां हिस्सा है अग्रभाग का. तो क्या वो टीवी सीरियल के कैमरा से कैप्चर होगी, माइक्रोब्स वाला जो टेलीस्कोप है उससे भी नहीं नजर आएगी, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएगी. तो फिर कैसे हम आत्मा के साइज को समझाएंगे, बताइए क्या है आत्मा का फॉर्म. आत्मा का फॉर्म है, इसके ऊपर एक प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आप अपने सर्दी के दिनों में अपने हाथों पे दस्ताना पहनते हैं, पहनते ग्लव्स, तो दस्ताना पहले बनता है या हाथ पहले बनता है. हाँ जी, ऐसा तो नहीं था दस्ताने बन गए तो भगवान ने कहा ऐसे दस्ताने बने हुए हैं चलो ऐसे हाथ बना देते, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं, पहले हाथ बने फिर दस्ताने बने. तो आत्मा पहले बनी या शरीर पहले बने. जिस दिन आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है उसके बाद शरीर की रचना 9 महीने में पूर्ण होती है ना. तो आत्मा तो पहले दिन ही थी, तभी तो ग्रोथ हुई, वरना क्या बोल देंगे, आपके पेट में लंप है और उसको एक्सक्रीट करा दो, सर्जरी करा दो उसकी. और लंप तो ग्रो नहीं करता है, तो क्या ग्रो करता है, लाइव, जो जिस चीज में जिंदगी है, जीवन है. तो आत्मा है, तो क्या फॉर्म है आत्मा का, क्योंकि शरीर का निर्माण उसके ऊपर हो रहा है, कैसा होगा. अब जरा लॉजिक लगाइए अपना, सूक्ष्म तो है ही है, बोल गया 10,000वां हिस्सा सूक्ष्म तो हो गया छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, लेकिन दिखता कैसा है, सूक्ष्म रूप में भी तो कुछ तो फॉर्म होगा, बॉडी का फॉर्म होगा. एग्जैक्टली करेक्ट, जैसे दस्ताने का फॉर्म है और उसके नीचे आप देखें विकेट कीपर खड़ा है, वो विकेट कीपर हाथ में ग्लव्स पहन के खड़ा है, उसके हाथ नहीं दिख रहे पूरे मैच में, तो उसके हाथ का शॉप शेप कैसा होगा? जैसा ग्लव्स का शेप है, तो हमारी आत्मा का शेप कैसा है? जैसा हमारा शेप है। और अगर आत्मा का शेप वैसा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का शेप कैसा है? आत्मा कैसा? वैसे हमारे जैसा, दो हाथों वाले भगवान। कोई भगवान के अष्टभुजा रूपी और 16,000 रूपी और ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। हाँ, भगवान कहते हैं क्योंकि मैं दिव्य हूं तो मैं अपने आप को विस्तारित कर लेता हूं 1,000 भुजाओं में भी, 4 भुजाओं में भी, निराकार रूप में भी, परंतु मेरा जो ओरिजिनलिटी है वो है दो भुज रूप, द्विभुजधारी। कौन है वो? कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे। सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं। जैसा ऊपर का फॉर्म वैसा आत्मा का फॉर्म, आत्मा का फॉर्म वैसा परमात्मा का फॉर्म, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा, है ना? क्रिस्टल क्लियर, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। प्रभुपाद जी एकदम 100% हम लोगों को सिखाने के लिए क्लियर एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये 11वें श्लोक से लेकर भगवत गीता के 30वें श्लोक तक सांख्य योग के रूप में आत्मा का विश्लेषण किया गया है कि आत्मा कैसी होती है। आत्मा मरती है तो मतलब हम कभी मरते हैं, तो फिर फियर ऑफ डाइंग क्यों है हमको? मरने का डर क्यों है? तो अटैचमेंट, मोह, ये बताया गया है इसके अंदर। और आत्मा पुनः 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 वैसी की वैसी रहती है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता। ऐसा नहीं होता जवान आत्मा बूढ़ी आत्मा, जब आए थे बच्चे थे तब छोटी आत्मा, जब मरे तो बड़ी आत्मा, ऐसा नहीं होता। आत्मा कैसी होती है? जैसे पहले दिन आई थी माता की गर्भ में, शरीर त्यागने के बाद भी वैसी ही रहती है। तो मतलब हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता। किसमें बदलाव होता है? तो डार्विन थ्योरी यहीं गलत हो गई। डार्विन थ्योरी बात करती थी बॉडी इवोल्यूशन के ऊपर, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त अध्यात्म बात करता है चेतना के इवोल्यूशन के ऊपर। चेतना का 5 स्तर में इवोल्यूशन होता है। होता है, पहला स्तर होता है जब वो पेड़ पौधों के रूप में होती है, जब वो बच्चे तो पैदा करती है परंतु चल नहीं सकती, कपड़े नहीं पहन सकती, तो उस समय आत्मा को जो शरीर प्राप्त हुआ है वो शरीर की जो चेतना है उस चेतना को बोलते हैं संकुचित चेतना, आच्छादित चेतना, आच्छादित चेतना। तो आच्छादित चेतना में वो पूरी कवर्ड कॉन्शियसनेस है ना, पूरी ढकी हुई है, उसको मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या खाना है, कौन मेरे ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है, कोई मुझ पर हंस रहा है नहीं हंस रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप इसे काटते हैं तो दुख जरूर होता है, जब आप इनके पेड़ों के पत्ते खींचते हैं तो इनके जैसे हमारे कोई बाल खींचे हमें दर्द होता है। इसीलिए तुलसी महारानी के पत्ते चुनते वक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक खींचना चाहिए, क्योंकि इनमें प्राण है, है ना? और प्राण में भी ये तो दिव्य है, ये नॉर्मल पेड़ से अलग है। तो इनके पत्ते अगर ऐसे खींचेंगे तो इनको जैसे हमारे कोई नाखून खींचे, बाल खींचे, वैसा कष्ट होता है। तो किसी देवी को ऐसा कष्ट देकर हमें भक्ति प्राप्त होगी? कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी कहते हैं। तो तुलसी का देख लेख जो है वो बड़े ही ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, जैसे हम अपनी माता, अपने पिता, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये होती है आच्छादित चेतना। फिर इवोल्यूशन होता है दूसरी चेतना में, क्या होती है आच्छादित के बाद? मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना है जानवरों में, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन कपड़े पहनना है, ठंड पड़ रही है, भूख लगी है, ये नहीं बात कर सकते, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। एक बोल रहा है यहाँ पे पीछे, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। तो ये होती है कौन सी चेतना? मुकुलित चेतना। इसके बाद इवोल्यूशन होता है फिर चेतना का, फिर कौन सी है? संकुचित चेतना। वो किस में होती है? हम सब में होती है, मनुष्य जाति में। अब मनुष्य जाति के पास दो रास्ते हैं, जिसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन पे गए कभी आप लोग, रेलवे स्टेशन के जंक्शन? तो क्या जंक्शन की क्या क्वालिटी है? इंटरचेंज कर सकते हैं, गाड़ी को बदल सकते हैं रेलवे स्टेशन पे। अगर आपने यहां से कोई गाड़ी पकड़ ली है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर आप गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो कहां चेंज होगी? जंक्शन पे जाके, कोई बड़े स्टेशन पे जाके, जंक्शन पे। जंक्शन मींस वहां से कुछ गाड़ियां प्रारंभ होती हैं। तो मनुष्य शरीर जो है वो जंक्शन है। अब यहां पर ऑप्शन है, वापस मुकुलित में जाओ, आच्छादित में जाओ, या फिर इससे ऊपर विकसित, पूर्ण विकसित में जाओ। दोनों ऑप्शन है। विकसित चेतना है वो लोग जो गीता को पढ़ते हैं रोज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का जो जाप करते हैं वो विकसित चेतना के हैं। जो इस मंत्र का जाप नहीं करते, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का और कोई मंत्र नहीं, और कोई मंत्र नहीं, कोई ओम नमः शिवाय नहीं, कोई हनुमान चालीसा नहीं, जब तक कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करता, उसकी संकुचित चेतना विकसित चेतना की ओर उन्मुख नहीं होती है। ऐसा लिखा गया है ब्रह्म वैवत पुराण में, अग्नि पुराण में, कलि संतरण उपनिषद में, ब्रह्म नारद्य पुराण में, भागवत पुराण में और भगवत गीता में, इतनी सारी पुष्टि है। लेके बैठ जाएंगे तो फिर आज आपकी जॉब नहीं हो पाएगी, आज का दिन शाम तक हम चर्चा कर सकते हैं। विकसित चेतना, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित किसकी है? भगवत धाम जाने के लिए तैयार है जितने भक्त हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, जो ये सोचते हैं अब मैं तो विकसित हो गया, अब दूसरों को भी विकसित करना है। तो जो दूसरों को विकसित कर सकता है उसको पहले खुद तो विकसित होना पड़े। तो जो दूसरों को विकसित कर सकता है वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण विकसित। ये है आखिरी इवोल्यूशन चेतना का। तो शरीर का कोई इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है। डार्विन की फिलॉसफी ठीक थी परंतु वो शारीरिक रूप पे बात कर रहे थे, और होती है वो इवोल्यूशन आत्मिक रूप। तो हमारा इवोल्यूशन होता है आत्मा की चेतना का, परंतु शरीर का कोई इवोल्यूशन नहीं। शरीर का तो क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, नीचे गिरती है, पैदा होती है, बड़ी होती है, प्रोडक्ट साइकिल की तरह, और अंत में समाप्त हो जाती है। तो फिर भगवान ने 31वें श्लोक से लेकर और जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा 38वें श्लोक तक भगवान ने किस पर चर्चा करी? हाँ जी, भगवान ने स्वधर्म पर चर्चा करी और उनको बोला अर्जुन तुम अपने जो है तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा अगर तुम अपने क्षत्रिय होने के स्वधर्म का पालन नहीं करोगे। ये 31वें श्लोक से 38वें श्लोक पर चर्चा करी। तो अब हम 39वें श्लोक में जो चर्चा करने जा रहे हैं, अब इसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं एशाम ते अभिता सांखे बुद्धि योगे त्योमम शृणु। बुद्धि योगे, अब भगवान बात कर रहे हैं बुद्धि योगे। तो बुद्धि योगे का मतलब क्या है? बुद्धि योग। तो पिछले श्लोक में हमने जब कथा करी थी तो हमने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की थी, आसन प्राणायाम यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि सबकी चर्चा हमने करी थी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धि योग के ऊपर। क्या है बुद्धि योग? बुद्धि योग का मतलब हमने बताया था पिछली बार, क्या है योग मतलब? जुड़ना, ज्ञान के द्वारा जुड़ना, ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा, और भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? तो बुद्धि योग मतलब बुद्धि के द्वारा जुड़ना। तो आप कहेंगे बुद्धि के द्वारा जुड़ना और भक्ति के द्वारा जुड़ना में क्या भेद है? भक्ति योग और बुद्धि योग देखा जाए तो समान रूप ही है, परंतु बुद्धि योग को और भी गहनतम ध्यान पूर्वक अगर हम समझें तो बुद्धि का इस्तेमाल करना, जैसे एक होती है भौतिक बुद्धि और एक होती है, भौतिक बुद्धि का मतलब समझो जैसे आपके घर में दूध है, दूध पीते हैं आप लोग, और कभी कभी दूध पीने से क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, गैस फॉर्म होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, ये सारे सिम्टम किसके हैं? दूध पीने के। तो दूध पीना हो गया भौतिक बुद्धि से भक्ति करना, लेकिन उस भौतिक बुद्धि में जब अध्यात्म जुड़ जाता है, भगवत गीता जुड़ जाती है, हरि नाम जुड़ जाता है, तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक बुद्धि भक्ति में जुड़ने पर कैसी बन जाती है? कैसी बन जाती है? आध्यात्मिक बन जाती है। भौतिक बुद्धि किसमें परिवर्तित हो गई? जैसे दूध में जामुन जोड़ने से क्या बन जाता है? दही। और दही किस काम आता है? पेट को ठीक करने के, इनडाइजेशन को ठीक करने के। एक चीज खराब करती है और एक चीज, तो बुद्धि दोनों के पास है। एक भौतिकवादी इंटेलिजेंट बन के MBBS बन सकता है, सर्जन बन सकता है, लेकिन जब तक उसमें गीता का ज्ञान नहीं जुड़ेगा वो उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा अपनी भौतिक बुद्धि को। तो भौतिक बुद्धि हो गई दूध और आध्यात्मिक बुद्धि प्लस भौतिक बुद्धि बन गई दही। तो ये हो गया बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। तो लोग कह सकते हैं बुद्धि बहुत सारे लोगों में है और वो अपने अपने अनुसार गीता का ज्ञान प्रवचन देते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं कर सकते। जैसे लोहा और जला हुआ लोहा, अग्नि में पड़ा हुआ लोहा, एक लोहा है उसको छुएंगे तो कैसा लगेगा? नॉर्मल लोहा, अगर अग्नि में नहीं लगा है, नॉर्मल लोहा। आयरन कैसा लगेगा? ठंडा, शीतल। लेकिन उसी आयरन को अग्नि में डाल दें तो क्या हो जाएगा? हाँ, कैसा गर्म हो जाएगा? अग्नि के समान। जितनी जलन अग्नि से लगेगी उतनी ही जलन, छाले पड़ जाएंगे, उष्म निकलेगी, ताप निकलेगा, किसमें से? उसी लोहे में से। तो वो लोहा छूने में लोग घबराएंगे और वो लोहा छूने पर अग्नि का कार्य करेगा। तो इस तरह से जब हम नॉर्मल होते हैं, ह्यूमन बींग, आप में और हम में क्या फर्क है, या फिर हम में और प्रभुपाद में क्या फर्क है? बस यही फर्क है, देखने में उनके भी आंख नाक कान है और हमारे भी, आयरन है दोनों देखने में, लेकिन एक आयरन भक्ति के ताप से गर्म हो गया है और एक आयरन नॉर्मल हमारी तरह पड़ा है। अब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ बोले भी तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है, उनके ग्रंथ, उनके जैसे महान भक्त जब किसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, तो वो जीवन में छाप छोड़ते, छाले छोड़ जाते हैं हमारे, क्योंकि वो अपने आप को पूरा तपाए हैं ऑस्टेरिटी में, अपनी भक्ति में पूरा तपा लिए, तो वो ही शरीर आयरन आग बन जाता है। उसी शरीर से ही वैसे सिम्टम प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और इसीलिए गुरु को और महान वैष्णवों को भगवान के समान साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु की चरण वंदन करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारे जीवन का परिवर्तन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लोग बोलते हैं अरे इनमें क्या खास बात है, इनमें यही खास बात है कि एक नॉर्मल आदमी का संग करने से, जैसे नॉर्मल लोहे का संग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्म लोहे को छूने से हमारे शरीर पे छाले पड़ते हैं, एक सच्चे भक्त का संग करने से हमारे हृदय में छाप पड़ती है भगवान कृष्ण की, है ना? तो ये बहुत ही जरूरी है समझना हमको। तो व्यक्ति बात करते हैं हम यहाँ पर कर्म बंधन से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले भगवान ने एक और चीज बोली इस श्लोक में, बुद्धि योगे तो इमम श्रणु। श्रणु किस पर बल दे रहे भगवान? सुनने पर। हम सबको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए सुनने पर। कोई भी प्रवचन हमारे गीता कोर्स जो चल रहा है, इसका मैसेज भी आता है, ये कभी भी कितना भी हमें इम्पोर्टेंट कार हो, प्रयास करें, बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो हम इसको सुने, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं बुद्धि योगे तो इमम श्रुणो, सुनो इसको। तो बुद्धि योग का मतलब ही है, बुद्धि कब भगवान की सेवा में लग पाएगी? जब हम सुनेंगे। श्रवणो, श्रुणो भगवान ने कहा, तो ये बहुत जरूरी है हमको सुनना। तो कर्म फल के ऊपर जब व्यक्ति चर्चा करते हैं तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कर्म तो शरीर करता है, कर्म तो शरीर करता है, इसमें आत्मा की क्या गलती है? जी मेरी आत्मा तो बहुत अच्छी है, मैं कभी गलत नहीं करना चाहता, परंतु पारिवारिक परिस्थितियां मुझे मजबूर करती हैं ऐसे गंदे कर्म करने पर, किसी को बोलने पर, किसी के लिए गलत बोलने पर, लड़ाई करने पर। मेरी क्या गलती है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो सच्चिदानंद है, मैंने क्या किया है? तो शरीर ने किया। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता के ऊपर आप देखेंगे तो एक चित्र बना हुआ है, इसमें एक सारथी है, पांच घोड़े हैं, रस्सियां हैं और उस पे अर्जुन बैठे हुए हैं, बैठे। तो इसमें जो पांच घोड़े हैं ये किस, कौन है पांच घोड़े? हमारी इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां? आंख, नाक, कान, मन, जिह्वा, त्वचा, फाइव सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन से ये पांच घोड़े, इनको खींचने के लिए कौन है? रस्सियां। रस्सियां कौन है हमारे शरीर में? मन। और ये रथ क्या है? शरीर। अब इसमें सारथी कौन है? हाँ, इसमें तो सारथी भगवान कृष्ण, हमारे शरीर पे सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि योग में चर्चा हो रही है, बुद्धि। और इसमें सवारी कौन है, यात्री कौन है? हम, आत्मा। तो अब यहां पर जहां घोड़े चाहेंगे वहां रथ जा सकता है, है ना? घोड़े चाहेंगे कि सामने बारात जा रही है और हम वहां डांस देखना चाहते हैं तो घोड़े वहां लेके चले जाएंगे, लेकिन यात्री चाहता है कि ना जाए तो किससे बोलेगा? सारथी से, बुद्धि से बोलेगा, मन से नहीं बोलेगा, बुद्धि से। अब बुद्धि के पास ये शक्ति है कि वो मन को नियंत्रित करके सारे घोड़ों को, इंद्रियों को रोक ले, है कि नहीं है? ये शक्ति है उसके पास। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी बुद्धि को तो क्या है, बुद्धि अगर मन के द्वारा हम हार जाते हैं, है ना? कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन में पता नहीं प्रभु जी कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। अरे आपको बुद्धि भी तो दी है, उस बुद्धि के द्वारा उस मन को नियंत्रित करो तो घोड़े नियंत्रित हो जाएंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, है ना। इसमें किसके कोड़े लगने चाहिए? संयम। संयम मतलब नियम यम जो हमने पिछली बार चर्चा किए, है ना। इस रथ को उस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और कुछ नहीं बोल रहे, कौन सा भजन बोल रहे? कृष्ण और गोविंद का नाम बोल रहे। कोई विष्णु की बात नहीं हो रही है, किसी साई बाबा की बात नहीं हो रही है, किसी शिव जी की बात नहीं हो रही है। संयम में लगाना है, कृष्ण गोविंद नाम गाना है, तो आपके घोड़े जो है ऑटोमेटिकली सेंसेस उस दिशा में जाएंगे जिस दिशा में बुद्धि चाहेगी, सारथी चाहेगा। अब यात्री जो है वो उस पर बैठा हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता। बस वो इतना कर सकता है, अपने सारथी को बोल सकता है, खींचो भाई मुझे उस तरफ नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है। बुद्धि का इस्तेमाल, इसी को बोलते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा में लगना। अब इसमें एक और चीज है समझने की, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है, कर्म का बंधन मिलता है। कोई पूछता है आज दुख क्यों है, बोले पिछले जन्म में जो कर्म किया उसका दुख, पिछले जन्म में जो किया उसका दुख। बंधन है कर्म का बंधन, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। बोले सब कुछ भगवान ने निर्धारित किया है तो हम क्या करें, हमारी कहां पर आजादी है? बोले जी आपको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिए भगवान ने, फ्री विल दिया है। तो क्या कार्य करती है फ्री विल? फ्री विल यही कार्य करती है कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, उस परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते। आज आपके घर में बीमार होना है किसी को, वो परिस्थिति किसी पूजा भक्ति से बदली नहीं जा सकती। प्रारब्ध आएगा ही, सिचुएशन विल अराइव। Now what to do? प्रभु जी फिर हम क्या करते हैं जब सब कुछ निर्धारित है? आप ये करते हैं जब परिस्थिति आती है तो वहां पर अपनी मनोस्थिति का इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति में कैसे विचार पूर्वक कार्यशील होना है, ये आपके पास फ्री विल है। एक व्यक्ति का घर में लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है, अब वो उस परिस्थिति में क्या कर सकता है? बदलाव कर सकता है? अरे दो घंटा पीछे चला जाए काल और मैं चोर को पकड़ लूं, सीसीटीवी कैमरा, मेरी नींद ना लगे, मैं अलार्म क्लॉक पे उठ जाऊं, नहीं कुछ नहीं कर सकता। परिस्थिति आ गई है, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है। स्वीकार करने के दो रास्ते, एक स्वीकार करने का रास्ता है मुस्कुराकर भजन करके, दूसरा है रोकर सर फोड़ फोड़ के। कौन सा अच्छा है? सिंपल। तो यही है बुद्धि योग, अपनी बुद्धि से सही विचार करना। तो हमने अभी जो कर्म किया उसका बंधन मिल रहा है अब, और आप जो कर्म कर रहे हैं उसका बंधन मिलेगा आगे। तो इसलिए अभी वो कर्म करें जिसका आगे कोई बंधन, तो रिएक्शन वैसा करें। सिचुएशन हम चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करना ये हम चेंज कर सकते हैं, और इस चेंज करने में हम वैसे रिएक्ट करें जिसमें रिएक्शन ना हो। समझ रहे हैं आप केमिकल रिएक्शन? पिछले जीवन में जो कर्म किया उसकी सिचुएशन आई, अब हमारे पास आजादी है कि सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, और अब मैं वैसे रिएक्ट करूं जिसका आगे कोई रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्ट करना चाहिए? तो रिएक्ट करने के तरीके बताए। एक दीवार है लोहे की और मेरे हाथ में एक गेंद है और प्रभु जी के हाथ में भी गेंद है। प्रभु जी ने उस गेंद को पकड़ा और फेंका, और वो इनके हाथ में जो गेंद थी वो टेनिस बॉल थी, होती है ना टेनिस बॉल, हरे रंग की टेनिस बॉल, उसको जोर से इन्होंने दीवार पे फेंका लोहे की, तो क्या होगा? हाँ जी करण प्रभु, क्या होगा? दीवार पे टेनिस बॉल को फेंका लोहे की, तो क्या होगा? कितनी जोर से आएगी? जितनी जोर से, ठीक बात है। अब मेरे हाथ में है लोहे की बॉल, हाँ सॉरी मैग्नेट की बॉल, चुंबक की बॉल, और मैंने लोहे की दीवार पे इनसे भी ज्यादा तेज फेंका, क्या होगा? लेकिन दोनों ने कर्म किया, दोनों ने कुछ ना कुछ क्रिया करी, और एक ही क्रिया करी बॉल फेंकने की, पर इनकी बॉल वापिस आ रही है, मेरी बॉल वापिस। तो टेनिस बॉल है जीवन के नियमित क्रियाएं करना। किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बना और समाज सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति उसके लिए वो पैसे कमा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता मैं तो सोशल वर्क में लगा हूं मेरे को पुण्य कर्म मिलेगा, ना। आप उसके लिए पैसे ले रहे हैं। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, निष्काम भाव से किया जाएगा, वो आपके कर्म बंधन से रहित होगा। तो क्या करें? तो कोई भी काम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। धन अर्जित किया, उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाएंगे, धन कर्म फ्री हो जाएगा। जो कुछ भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, भोग लगाने के बाद प्रसाद कर्म फ्री हो जाएगा। जो कुछ भी पहनेंगे भगवान के चरणों में अर्पित करके पहनेंगे, वो कर्म फ्री हो जाएगा। जब भी काड़ी का इस्तेमाल करेंगे ऑफिस के अलावा, तो मंदिर जाने में करेंगे। अगर 90 बार मंदिर आए तो 10 बार मंदिर गए तो 90 बार ऑफिस आए, तो वो गाड़ी का कर्म बंधन फ्री हो जाएगा। तो जो भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा वो गेंद वापस नहीं आएगी, लेकिन जो भी कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाएगा वो गेंद उतनी जोर से वापस आएगी जितनी जोर से अभी इंजॉय किया गया है। तो जब हम रिएक्ट करते हैं, किसी ने मुझे बुरा भला कहा या किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक बॉल है, मैं फेंकूं और उसका कर्म बंधन लूं, और एक बॉल है, मैं फेंकूं उसका कर्म बंधन ना मिले। तो एक बॉल फेंकी मैंने, उसको दोबारा से उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाकर बुरा भला कहा, और दूसरा ऑप्शन है मैंने सहन किया और भगवान से प्रार्थना करी और कहा ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, आपका बहुत धन्यवाद, मैंने पिछले जन्म में आपको कुछ कहा होगा इसलिए आज आप मुझे कुछ कह रहे हैं, और शांत हो जाता हूं। तो अब इसका कर्म बंधन बनेगा, हाउ यू रिएक्ट, ये है। तो ये है कर्म बंधन काटने की फिलॉसफी जो कि भगवान यहां बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म के बंधन में जो फंसा हो और उसके ऊपर खूब सारी रस्सियां बंधी हो, पहले के जो कर्म किए उसके बंधन में हम फंसे हैं, पिछले जन्म में या पिछले से पिछले में हम बंधे हुए हैं, उसमें गांठें भी पड़ी हैं, 1 knot 2 knot 3 knot, और हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, कान से सुन पा रहे हैं पर हम उस पथ पर चल नहीं पाए। प्रभु जी आप भगवत गीता का प्रवचन देते हैं ना, बड़ा मनोहर लगता है, मन करता है बस आपकी मंडली ज्वाइन करें और छोड़ दे काम धंधा, लेकिन हम बंधे हुए हैं, खुलेंगे कैसे? कैसे खुलेंगे? ऐसी किडनैपर ने रस्सियों से बांध दिया हो तो कौन खोल सकता है? किडनैपर खोल सकता है, और किडनैपर तो खोलने वाला नहीं है, हाँ एफर्ट्स भी नहीं खोल सकते, कैसे खोलेंगे? बंधे हुए हैं बिल्कुल, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े, गांठें बंधी हुई हैं एकदम, कौन खोलेगा? वेल विशर मतलब हु वॉन्ट्स टू सेव अस, जो हमारे को बचाना चाहता है। तो कौन है वेल विशर हमारा? भगवान, भगवान के भक्त। भगवान तो कुछ करते नहीं ना, भगवान तो इम्पार्शियल है। भगवान ने तो माया रूपी शक्ति को बोल दिया कि जो जो मेरी शरण में ना आए इन सबको बांध लो कर्म बंधन में, वो बांध लेती है। अब छूटने का तरीका क्या है? भगवान कह रहे हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, हे देवी जो है ये गुणमयी बड़ी दुरत्या है, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव या प्रपद्धन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आएगा वो तुरंत निकल जाएगा, और भगवान की शरण में आना मतलब भगवान के भक्त की शरण में आना। तो भक्त जो है वो आपके बंधन को काट सकता है, काट वही सकता है जो बंधन से रहित है। आप बोले अपने हस्बैंड को कि काट दो, बोले कि मैं भी बंधन में हूं आप भी बंधन में हो तो दोनों बंधे पड़े। बच्चों से बोले वो भी बंधन में, अपने माता पिता वो भी बंधन में, तो कौन काटेगा जो बंधन रहित है? और कौन है बंधन रहित? भक्त, गुरु, वैष्णव, वो काट सकते हैं। और काटेंगे कैसे, किस चीज से काटेंगे? हरी नाम से काटते रस्सी को। कैसे काटते हैं? भौतिक जगत में कैसे काटते हैं? अध्यात्म की चर्चा नहीं, कैसे काटेंगे अगर रस्सी से बांधा हो? शस्त्र से काटेंगे, शस्त्र से काटेंगे। शस्त्र मतलब कि कैंची, तलवार, चाकू, पेनी धार होनी चाहिए एकदम, है ना? तो हमारे जीवन में क्या है? शस्त्र नहीं है, क्या है? शास्त्र है। तो एक भक्त होना चाहिए जो कथा सुनाए, और हमारे साथ में गीता भागवत शास्त्र होने चाहिए। जब ये शास्त्र की पेनी धार चलती है ना, ओ हो ये क्या लिखा है इसमें, ओ माई गॉड, मैं अभी तक क्या क्या कर रहा था, क्या खाता था, क्या पीता था, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन में था, अब मुझे सतो गुण में आना है, माय लाइफ इज चेंजिंग, एक एक करके बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। वाओ प्रभु जी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है, लगता है थोड़ा खुल रहे हैं हम लोग, वी आर ओपनिंग नाउ। तो ये शास्त्र ही शस्त्र का कार्य करेंगे, और भक्त ही आपके जीवन के बंधनों को काट सकते हैं। तो देखा जाए कृष्ण भावना भवित होना ही बुद्धि योग को अपनाना है अपने जीवन में। इसके आगे श्लोक में भगवान कह रहे हैं बुद्धया युक्तो याया पार्थ। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को एक और नाम दिया है पार्थ। प्रथा कुंती का नाम है, प्रथा पुत्र होने के नाते पार्थ नाम उनको दिया गया है। तो कहते हैं कर्म बंधनम प्रहस्यसी, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे अगर तुम क्या करोगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। अभी किसका इस्तेमाल कर रहा था अर्जुन? मन का, दिल का। अरे अरे मेरी फैमिली के लोग हैं, मैं कैसे काटूं? आपके बच्चे के टांग में फोड़ा हो जाए, इन्फेक्शियस, डॉक्टर के पास लाएंगे, वेल विशर है, डॉक्टर क्या कहेगा? काटो। हाँ मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब दर्द होगा, कैंची सुई नहीं, फोड़ा ही ठीक है। बोले पूरा पैर काटना पड़ेगा एक दिन। कोई बात नहीं, अभी प्लीज मत लगाइए, ये अटैचमेंट है मन का। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, यू डू योर वर्क, वो क्या करेंगे? काटेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं काटो इनको, ये सामने खड़े हैं। लेकिन अर्जुन मोह के वश सोच रहे ये तो मेरे प्रियजन है, और भगवान कह रहे हैं अरे कोई किसी का प्रिय नहीं है, काटो इनको मेरे कहने पर, बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की जो वाणी है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। कहते हैं जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वो चतुर बन जाता है जो कृष्ण भक्ति करता है, क्योंकि कृष्ण उसको बुद्धि देते हैं। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत पूर्वक मेरा भजन करेगा 24 आवर्स, हाँ, और कैसे करेगा? प्रीति पूर्वकम, लविंगली, प्रेम पूर्वक। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, मैं उसको बुद्धि दूंगा। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है इसका, अभी चर्चा हो रही बुद्धि योग की, उत्तर देंगे 10वें अध्याय में जाके कि बुद्धि योग मैं ही देता हूँ, और किसको देता हूँ? सतत तेषाम सतत कीर्तनाम, जो लगा रहेगा मेरी भक्ति में हमेशा, उसको मैं बुद्धि दूंगा। और कैसी बुद्धि दूंगा? हाउ टू कम टू मी, मेरे तक कैसे पहुंचना है? तो पहले हमें अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है भजन करने में, और फिर वो भगवान भजन करने से बुद्धि देंगे कि उन तक कैसे पहुंचना है ना। तब हमारे ये मन, हमारे अहंकार, हमारे सारी जितने भी हमारे साथ में मद अहंकार ये चल रहा है, अनर्थ, ये सभी शांत हो जाते हैं। आप देखिए अपनी प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं चाहिए कि बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आया और घबरा गए। कुंती महारानी भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रार्थना कर रही हैं, 8वें अध्याय में बोलती हैं कुंती महारानी, जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध समाप्त हो जाने पर वापस द्वारका नगरी जा रहे थे, तो कुंती महारानी, सुभद्रा, पांडव जन सभी खड़े थे, और सबसे भगवान कृष्ण ने कहा अपनी इच्छा अनुरूप मांगो, अब मैं द्वारका जा रहा हूँ, किसी की कोई अंतिम इच्छा हो मेरे जाने से पहले। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, यहाँ तक कि उनकी बहन ने भी उनसे कुछ मांगा, सुभद्रा ने, अर्जुन ने भी मांगा, भीम ने भी मांगा, परंतु कुंती महारानी ने क्या मांगा? दुख मांगा। कुंती महारानी कहती हैं विपदा संतो तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यायत अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कह रही हैं विपदा संतो तो शाश्वत, विपदा मतलब प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम दो जो शाश्वत हो, कभी ना खत्म होने वाली। विपदा संतो तो शाश्वत, और आगे कहती हैं तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु, आप पूरे जगत के गुरु हैं, आप हृदय में बैठकर गाइड करते हैं लाइक ए गाइडिंग लाइट, आप हमें दिशा दिखाते हैं। जब जब हम परेशानी में थे तब तब आप आए, जब हमारे को लाक्षाग्रह में जलाया गया तब आप आए, जब हम वनवास में गए तब आप आए, जब कुंती की, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब आप आए, जब जब दुर्वासा ऋषि हमारे घर भोजन पाना चाहते थे तब अक्षय पात्र की मदद करने आप आए, आप हर जगह आए जब हमारे को मुसीबत थी, और आज जब युद्ध करना था तब आप आए, तो और जब युद्ध समाप्त हो गया तो आप क्या हो रहा है? आप जा रहे हो। तो भक्त सोचते हैं कुंती महारानी ने दुख मांगा, लेकिन कुंती महारानी ने दुख नहीं मांगा, कुंती महारानी ने भगवान, क्योंकि भगवान तो वहीं आते हैं जहां दुख होता है, दुखियारी की मदद करने। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे क्या दो, विपदा दो आप, विपदा संतो तत् शाश्वत विपदाएं दो, ताकि सदा सदा क्या हो सके, भविता दर्शनम यत् स्यात्, मैं आपका दर्शन करती रहूं, और आपका दर्शन करते करते जब शरीर छोड़ूंगी तो क्या होगा, आप पुनर्भव दर्शनम, इस भव का, भवलोक का दोबारा दर्शन, बर्थ ओल्ड एज डिसीज, इस सबसे मैं बच जाऊंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस सबसे बच जाऊंगी। तो अगर मुझे बचना है इससे तो आपका शाश्वत दर्शन चाहिए, और आपका शाश्वत दर्शन तो तभी होगा जब हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल होंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। दुख नहीं होता उस जीवन में जो व्यक्ति सुख में भी भगवान का दर्शन करता है। तो हमें भगवान का स्मरण बड़े ही विश्वास पूर्वक करना चाहिए। जैसे एक राजा था, वो अपनी रानी के साथ में रथ में बैठ करके निकल रहा था एक राज्य से, और तुरंत वहां पर क्या हो गया, बहुत जोर की बारिश होने लगी, और सुबह राजा को 4 बजे अपने घर में मंगला आरती का दर्शन करके आरती करनी थी। तो रानी बोली कि देखिए आप रोज सुबह 4 बजे मंगल आरती दर्शन करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे हमें भी लोग बोलते हैं, अरे रोज माला करते हो, थोड़ा घर का भी देखा करो, एक दिन माला नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये तो भक्त का प्रेम है। भक्त ने कहा, राजा ने, कि रानी आज कुछ भी हो जाए, रात्रि में हमें वापस अपने महल पहुंचना है, तुम बैठ जाओ। जोर जोर का तूफान आया, बारिश आई, वो चलता रहा चलता रहा। ओ, कई लोगों ने लौटते हुए भी बताया, कुछ लोग रिटर्न मार रहे थे, यू टर्न मार के बोले, राजा आगे मत जाना, बहुत भयानक पेड़ गिरे पड़े हैं, जंगली जानवर और हाथी एकदम बेहाल होकर रोड जंगलों में घूम रहे हैं, और आपको क्या करेंगे, तहस नहस कर देंगे, चोर लुटेरे डाकू भी भाग दौड़ रहे हैं, ऐसा समय ठीक नहीं है, रानी अलंकार पूर्ण रूप में आप उनको ले जा रहे हैं, शोभामान है, इतने स्वर्ण मुद्राएं पहने, उन्होंने स्वर्ण अलंकार पहने, जाइए जाइए जाइए, वापिस जाइए। राजा बोला, नहीं, मुझे अपने महल जाना है, भगवान की सेवा करनी है। जब घर पहुंचे सही सलामत, 3:30 बजे घर पहुंच गए, तो रानी बोली कि आप कैसे हैं, आपने मेरी एक बात नहीं मानी, अगर कुछ हो जाता तो। तो राजा ने क्या किया, अपने जेब से, अपने म्यान से तलवार निकाली और रानी की गर्दन पे लगा दिया, अब एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो रानी क्या बोली, हंसने लग गई, बोली कि क्या कर रहे हैं आप और मेरी गर्दन काट देंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कहा, नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, बस एक शब्द और बोला तो गर्दन अलग। रानी बोली, क्यों मजाक करते हैं आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कोई किसी से प्रेम करता है वो उसकी गर्दन काट सकता है तो, है ना। उन्होंने तलवार वापस म्यान में रखी और कहा, जिस तरह से तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा, ऐसे ही मुझे अपने भगवान कृष्ण पे भरोसा है कि अगर वो कोई परेशानी दे रहे हैं तो उससे निकलने का भी रास्ता बताएंगे। तो ये श्रद्धा है हमारी भगवान के ऊपर, तो इस तरह से श्रद्धा रखें। गौर पूर्णिमा उत्सव आने वाला है, ज्यादा तो नहीं बोल सकते, 2 मिनट गौर पूर्णिमा के बारे में बताना चाहते हैं। गौर पूर्णिमा के बारे में मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर कुछ सुनाएं, पर कुछ अलग किसी और दिन हम प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है हरि भक्ति विलास का एक श्लोक, इसको जरूर पढ़िएगा। गौर पूर्णिमा है चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, पूर्णमासी के दिन भगवान गौर हरि नदिया ग्राम मायापुर के पास जो है, वहां पर मायापुर में कलकत्ता के पास, वहां भगवान जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता के घर में उत्पन्न होते हैं। तो कहा गया है कि ऐसे गौरांग महाप्रभु इतने दयालु हैं, भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि पहले सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन महाप्रभु कैसे हैं, वो कहते हैं तुम बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के, बस तुम भगवान कृष्ण का नाम जप करो, मैं तुम पर कृपा करूंगा। इसीलिए उनका हम बोलते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले महावदन्नाय अवतार, मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण। कलयुग में भगवान कृष्ण के स्वरूप, भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं गौरंग महाप्रभु के रूप में। वो थे काले कृष्ण, ये हैं गोरे कृष्ण, वो है काल कृष्ण, ये हैं गौर कृष्ण। इसलिए इनका नाम है गौर और हरि, गौर हरि, गौर कृष्ण, गौरांगा, किसी भी नाम से इनको पुकार सकते हैं। तो यहां पर एक श्लोक हरि भक्ति विलास का मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है, कतश्चना स्मृते यास्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विप्रितम स्यायत् श्री चैतन्या नमामितम्। ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है, होली का दिन आप मंदिर जाए, मंगला आरती जाए, कीर्तन करें, चैतन्य महाप्रभु का अध्ययन करें, उनके श्रवण करें, यूट्यूब पे जाए, इंटरनेट पे जाए, कैसे भी किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है। कठिन कार्य क्या होता है? सरल। आपके जीवन में कुछ भी रुका हुआ हो, भक्ति आगे ना बढ़ रही हो, जीवन में परेशानी हो, वो सरल हो जाएगा। किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता, अगर उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। इसीलिए एफर्ट्स की जो बातें करते हैं हम लोग, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये एफर्ट उनको लगाना पड़ता है जो गौरंग महाप्रभु का स्मरण नहीं करते। ऐसे चेतन महाप्रभु को हम सादर नमस्कार करते हैं। तो ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ पुष्टि करता है कि हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेनी है, क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है और गौरंग महाप्रभु आए ही हैं हमको भक्त अवतार रूप में भक्ति प्रदान करने के लिए। तो होली का दिन रंग बनाए या जो भी करें, लेकिन याद रखें गौरंग महाप्रभु का अभिषेक होता है मंदिर में, सुंदर कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, व्रत होता है उस दिन, जैसे जन्माष्टमी का व्रत है, सेम वैसे ही गौरंग महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण है ना दोनों, एक कृष्ण गोरे रंग के हैं, एक कृष्ण काले रंग के हैं। तो वही है कि वो कृष्ण यहाँ पर आए हैं और कृष्ण आने के बाद में उन्होंने वही सारी लीलाएं करी जो लीलाएं कृष्ण भगवान ने करी। अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया गौरंग महाप्रभु ने। जब गौरंग महाप्रभु बचपन में चलते थे तो उनके चरण चिन्ह देखकर उनकी माता पिता हैरान रहते थे। उसमें 32 लक्षण थे जो कि एक भगवान के अंदर होते हैं, है ना। उन्होंने उनके ऊपर सांप गुजर जाते थे तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था और वो तुरंत अपने आप को वराह रूप में प्रकट कर दिए। एक बार अपने आप को रामचंद्र के रूप में प्रकट कर दिए और ये कब हुआ? आज से 500 साल पहले। तो गौरंग महाप्रभु के शरण में जाएंगे तो कृष्ण भक्ति सरल हो जाएगी, गौरंग महाप्रभु के शरण में नहीं जाएंगे तो कृष्ण भक्ति सरल नहीं होगी, मुश्किल से प्राप्त होगी। इसीलिए हम जब जप करते हैं, अपना जप प्रारंभ करने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इस महामंत्र, इस पंचतत्व मंत्र को जपने से नाम जप हमें सरल रूप से प्राप्त हो जाता है।